सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरप्रतिशे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुगा पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्मयमां चरणं ये बतलाया हम ब्रह्म जन्म की भी लालसा नहीं करते। ये उद्धव जी कहते हैं यदि भगवान की लीला कथाओं में रुचि नहीं है तो ब्रह्मा के जन्म लेने से भी क्या हुई या ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ही क्या है। अनंत कथा रसस्य अनंत अनंत जो कथा है भगवान की ये अथवा अनंत भगवान की अनंत माने अनंत जो भगवान की लीला कथा है अनंत माने की गोपी गोपियों का जो रासलीला इत्यादि जो कृष्ण के साथ में विलासी ये अनंत है। ये अनंत जो कथाएं हैं शर्म अवस्था तक इन कथाओं में यदि रुचि नहीं है तो ये सब बेकार का है। ब्रह्म का जन्म या और कोई भी जन्म यदि कहो परमाप्त शिरोमणि होकर के भी अर्थात तो ब्रह्मा होकर के भी चारों वेदों के ज्ञाता होने पर भी और प्रमाणिक हमारे ब्रह्म संप्रदाय के गुरु होने पर भी गोपियां किस प्रकार किस लिए या ये गोपियां किस लिए वेद भी ही धर्म आचरण को प्रत्याग कर देती हैं। धर्म का आचरण क्यों प्रत्याग क्यों करती हैं ये तो बहुत ही आप्त माने प्रमाण है ये गोपियां सब विषय में उसका रहस्य बतला रहा हूं सनातन गोस्वामी जी का। वस्तुत रूढ़ भावी वेद का चरम प्रतिपाद्य तत्व है रूढ़ प्रेम जो है महाभाव यही वेदों का चरम तात्पर्य है। किसी दुर्लभ वस्तु को पाने के लिए उसके साधन भी बड़े दुर्लभ होते हैं इस चीज को पहले समझिए। यदि साग भाजी लेने जाइए पहले तो ऐसे ही बाजार में भिक्षा मांगने सब ऐसे ही साग ताक भाजी इत्यादि मिल जाता था कोई अधिक मूल्य नहीं होता था। दो चार पैसे होने से भी इतने साग सब ऐसे बाजार में मिल जाते थे। आजकल बाजार में जाइए 10 रुपए 15 रुपए से कोई किलो कोई चीज ही नहीं सब ये उसको पाने के लिए भी आजकल पैसे चाहिए अब इसे सस्ती तो कोई चीज हो नहीं सकती है। हाँ एक चीज जगत में सस्ती है खूब बिना पैसे आपको प्रचून जाए गाली गलौज मान अपमान ये सब बिना पैसे ही आपको लोग दे देंगे किंतु इसके अतिरिक्त तो कोई भी चीज सस्ती नहीं है ना? तो ये गोपी प्रेम इतना ऊंचा तो उसके लिए साधन कैसा होगा। यदि साधारण ब्रह्म ज्ञान के लिए स्वर्ग के लिए गीता के उपदेश दिए गए हैं स्थिति प्रगस्य का भाषा स्थित प्रगस्य का भाषा समाधिस्तस्य के सब ये बतलाया गया वहां पर बतलाया गया लाभ हानि जीवन मरण जस अपजस ये सबको सह लो। जो संसार में जो दुख होता है संसार वहां तापकारी है इसको सहो और सह नहीं सकोगे तो इतनी चीजें कैसे तुम धैर्य से पा सकते हो इसलिए इसको सहो कैसे? या तो हमारे पूर्व जन्म के कर्म या संस्कार है। तुम मान ले कि जैसे घर से भाग करके चला गया जंगल में, तो वहां पर तुमको कर्मों का फल भोगना पड़ेगा कि नहीं? बाघ आकर के खा जाएगा, पूरा नहीं खाएगा, हाथ काट करके चला जाएगा, आप भोगते रहिए। या पेट फाड़ दिया, बस मरेंगे भी नहीं, जीवित भी नहीं रहेंगे, अस्पताल में भी ठीक नहीं है, बरसों वहां पर पड़े रहे, भोगना पड़ेगा जरूर भाई। पेड़ की डाल, जहां पर भजन कर रहे हैं वहीं पर पेड़ की डाल गिर जाएगी, चोर डकैत आएंगे पीट करके, हाथ पैर तोड़ देंगे, कहां जाएगा? विष खा लेंगे, पच जाएंगे। विष खाने से, और जो भगवान ने ये शरीर दिया था उसके पहले जो तुम मर रहे हो, इसके लिए और भी करोड़ों गुण दुख आएंगे, नरक का ताप सहना पड़ेगा। ये कहीं रिहाई नहीं है, कहां जाकर के बचेंगे? कहीं भी बचने का उपाय नहीं। इसलिए हंसो या रोवो, तुमको भोग भोगना। इसलिए अच्छा है जो भगवान का नाम करो, जितने ही कर्म फल है सब धूल जाएंगे, इसके अतिरिक्त तो कोई दूसरा विश्व में कोई उपाय नहीं है। जहां भी जाओ बस दुखी की दुख, संसार के दुखों की बात है बस। महाराज जी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, हमारा पति ऐसा, हमारे भाई ऐसे हैं, हमारे ये ऐसे हैं, माने जहां जाओ बस इसका अतिरिक्त तो कोई कुछ दूसरी बात नहीं है, संसार में यही बात है। इसीलिए भगवान का भजन करने की जरूरत। प्रहलाद महाराज को कितना दुख भोगना पड़ा, वो भी भक्ति कौन सी, ज्ञान भक्ति, उसके लिए इतना पड़ा। सीता जी भगवान की स्वयं स्वरूप शक्ति, उन्होंने कौन सा पाप किया था? जयरावण उनको जबरदस्ती हरण करके एकदम खींच करके लेकर के चला गया। कैसे कष्ट से अपना जीवन सहा होगा? इच्छा करती तो विष ने, विष की इच्छा कर रहे थे, विष खाऊं और आत्महत्या, फिर नहीं किया। या अंत में कभी तो राम मिलेंगे, और राम मिले भी तो उनको दुत्कार करके त्याग कर दिया। उस समय में बतलाओ तो स्त्री के लिए इसे बढ़ करके कौन सा दुख हो सकता है, किंतु सहा कि नहीं। वो तो कर्म फल नहीं था, वो तो भगवान की इच्छा से जगत को शिक्षा देने के लिए कर रहे हैं, किंतु उसको सहा ना। आप लोग बिना सहे हुए ही सहज रूप में बस चले जाएंगे, दुख होगा नहीं, पूर्व जन्मों का संस्कार कहां जाएगा? इसलिए उसको सहना पड़ेगा। हंस करके करो, या तत्ते अनुकंपम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपापम, अपने जो कर्म विपाक हैं या तो अपने कर्म फलों से आएंगे, उनको भोगना पड़ेगा, भक्ति नहीं छोड़नी होगी। और या तो भगवान की कृपा मान लो, जो भगवान ने हमको संसार से वैराग्य लाने के लिए ये सब दिया है, ऐसा समझो, भोगना पड़ेगा। इसलिए द्रौपदी जी को सहवाया, दिखलाया। अब उससे दूसरे को कोई और दुख हो सकता है? भरी सभा में उसके पति और कौन कौन सास ससुर और सब है, उसके सामने में नंगा किया जा रहा है, बदलाव तो उस समय क्या करेगी वो? अभी तो आप लोगों को तो इतना दुख नहीं है, इसलिए बिल बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे तैसे भीख मांग करके भी जीवन हम निर्वाह करके भगवान का भजन करेंगे। इस तरह से ब्रह्मचारी लोगों को भी समझना चाहिए, यदि वो इन सब का विचार करके अच्छी तरह से गुरु वैष्णव के अनुगत में भजन कर सकें स्थिर चित्त करके, तब तो ठीक है। नहीं तो भाई, यदि अपने मनमाना आचरण करेंगे तो इसका फल जरूर तुमको भोगना पड़ेगा। अंततः शरणागति के साथ में, शरणागति के साथ में रहेंगे और उनको अपना सर्वस्व मान करके, गुरु वैष्णव को जो हमसे श्रेष्ठ है, अपनी बुद्धिमत्ता दिखलाओ मत, अपनी स्वाधीनता मत भी मत देख दिखलाओ, जैसा करें शीत नीचे कर करके सबको सहते हुए भगवान का भजन में अग्रसर हो। ये गोपियों की बात देखो, गोपियों को उन लोगों ने पीटा होगा कि नहीं? किनको? जो नित्य सिद्ध है उनको कोई नहीं छू सकता, जो साधन सिद्ध है उनके कुछ संस्कार रहे होंगे, इसलिए उनको घरों में यदि बंद किया और वो मान नहीं रही थी, थाल लेकर के जा रही हैं या कृष्ण से मिलने के लिए जा रही हैं, लठिया लेकर के खड़ा है द्वार, मारा नहीं होगा, कम दुखों को उनको हुआ होगा, तीव्र गृह ताप इत्यादि से ऐसे ही नहीं हो जाता। जब उनको सिद्ध जो है सिद्ध प्रेम की सिद्धि हो गई है, वस्तु सिद्धि भी हो गई है, तो भी उनका कितना दुख। ब्राह्मणी को देखो जी कितना दुख, इले संसार से दुख नहीं जाएगा भाई, ये तो रहेगा, इसको तुम सुख मान लो अच्छा है, और नहीं तो भजन नहीं होगा। चुड़काहट की तरह में जैसे खुजली होती है ना, ऐसे हरि हरि नाम करते रहो, खुजला करके इनको दुख कर दो, तब तो होगा भजन। और नहीं तो यहां से जाने के बाद भी कहीं भजन कर लेंगे या घर भी छोड़ देंगे, ये दुख भाई नहीं जाएगा, क्लेश नहीं जाएगा। साधन की अंतिम स्थिति तक, भाव अवस्था तक तुमको पीछा पीछा करेंगे, उस समय में भाव अवस्था में वो इतनी क्षीण हो जाएंगे, तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे, अभिज्ञात अखिलेश क्लेश हो जाएगा, वस्तु सिद्धि में ये सब नहीं रहेगा। तभी कुछ रहता है भगवान की कृपा से उनको नम्र विनयी बना करके प्रवेश कराने के लिए जाने। तो इन गोपियों को कितना कष्ट हुआ होगा, क्लेश, एक तो विरह का क्लेश कृष्ण से ही है, साथ साथ में उन्नित सिद्धा और उनको जो साधारण साधक हैं, जो भजन कर रहे हैं, उनको कितने क्लेश होते होंगे। यदि संसार के लोगों को देखो, कोई भी ऐसा नहीं जो अपने दुखों से बिल बिला नहीं रहे। मान ले कि घर वाले तो ताप दे रहे हो तो दे रहे, और कहीं जा रहे हैं पैर टूट गया फिर क्या होगा, हाथ टूट गया, आंख में चोट लग गई, आंख चली गई, फिर इसके लिए कौन दोषी। इस लाइन को समझ करके गुरु वैष्णव के अनुगत्य में चित्त को स्थिर करके भगवान स्थाने स्थिता, जो गृहस्थ में है वो गृहस्थ में रह करके, त्यागी है त्यागी, स्थाने स्थिता तनवांग मनोभी प्रायशो अजित है, हाँ साधु संघ में जहां है वहीं पर हो, किंतु साधु संघ में रहो, हरि कथा का श्रवण करते हुए उनको नमस्कार करो अष्टांग से, हरि कथा वाचक को, कथा को, स्थान को, श्रोता को, उद्योगता को, सबको प्रणाम करके चलो जी, इनके वजह से ये हरि कथा, इस तरह से नम्र विनम्र होकर के भजन करो। और नहीं तो भाई कहीं भी शांति नहीं, शांति से बैठने नहीं देगा ये जगह। वेद का चरम तात्पर्य क्या है, ये रूढ़ भाव। रूढ़ भाव क्या माने, मदन मदन इत्यादि जो भाव है गोपियों में, ये सब सहज भाव से अभिव्यक्त है, गोपियों का ये स्वभाव ही है, ये रूढ़ भाव। अर्थात ऐसे जो ब्रह्ममय वेद जिनके कंठ और हृदय में सत ही, किनके, गोपियों के, वेद इत्यादि सब जहां पर महाभाव ऐसे रूढ़ भाव है, वह वेद के ऋचाएं और सब क्या कर रही हैं, रोम रोम से अपने आप प्रकट हो रही हैं, कंठ से हो रही हैं, अति तहां दे वेद अध्ययन इत्यादि अभ्यास की क्या प्रयोजन है, उनकी क्या अवस्था है वेद की। किंतु तुम लोग मत समझ लो ऐसा जो हमको गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है, और गीता में जो आचरण लिखे हैं, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभा जया जयउ तस्मात, क्या है इसके बाद। आजकल हमारे हमारे यहाँ के रहने वाले हम लोग गीता नहीं छूते, गीता नहीं पढ़ते, भाई देखो कल्याण चाहते हो तो गीता पढ़ो, दशमे स्कंद भी पढ़ो, और उनके साथ उनके समान अपने जीवन बिताओ, ये मत समझो जो हम रागानुगा भक्त के एकदम हो गए हैं गोपियों के भाव जैसे, ऐसा मत समझो। यहाँ पर ब्रह्म कहने से क्या आत्मज्ञान, अरे उनके चरणों के झंकार से ही ये सब आत्मज्ञान तत्व निकलता रहता है गोपियों के, इसलिए उनके निकट स्वयं ही अभिव्यक्त है, उनको कोई प्रयास वेद इत्यादि की जरूरत नहीं। गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज जी को गीता भागवत इत्यादि पढ़ने की अब कोई जरूरत है, यहां राधे राधे के अतिरिक्त और कोई स्फूर्ति नहीं है जिनको, कुथाए गो मई प्रेम मई राधे राधे गो, दिन रात इसी महा क्या विप्रलम्ब हर्ष के मूर्तिमान विग्रह है वो, उनको ये सब पढ़ने की जरूरत है, कोई आचरण की भी जरूरत है तभी करते हैं। दिन रात जग कर कहां लीलाओं में मस्त रहते हुए हरि नाम करते हैं, कभी सोते नहीं, क्या खाते हैं ये भी लोगों का पता नहीं। हमारा जो साधन भजन देखो तो ये कैसा हमारा साधन भजन, इसलिए उनको ज्ञान अभ्यास की कोई भी जरूरत नहीं है। ब्रह्म जन्म भी इसी के लिए कहते हैं, ब्रह्म जन्म भी इस बहुवचन के द्वारा गौरव से समग्रता अपेक्षा विवक्षित, ये सभी चीजें इसी में विवक्षित, मैंने इसी में बतलाया गया। ब्रह्म माने ब्रह्म जन्म, फिर ब्राह्मण जन्म, और फिर ब्रह्म माने शब्द ब्रह्म माने वेद इत्यादि, ज्ञान इत्यादि, आत्मज्ञान, उनको कोई जरूरत नहीं है, उसे बहुत ऊपर। किंतु हम लोग इस स्थिति में नहीं है, हम लोगों को इस सब की जरूरत है। अतः एक प्रकार शंख ब्रह्म जन्म भी, यदि भगवान की कथा में रुचि नहीं हुई तो ये पंडित समझो, इतना दिन हमने बर्बाद किया मठ में आकर के भी, यदि हरि कथाओं में रुचि नहीं, यदि वैष्णव के प्रति आदर का भाव नहीं जन्मा, जिनसे हरि कथा सुन रहे हैं, सुनने का लक्षण क्या है, हरि कथा में रुचि हो रही है, जिन लोगों के मुख से ऐसी कथाएं निकलती हैं या जहां उनका आदर तो होगा, सेवा की भावना होगी, निष्कपट रूप में आत्म शरणागति होगी, यदि ऐसी सब चीजें देखना चाहिए, हमारी कुछ त्रुटियां हैं उसको दूर करने के लिए हमें खूब सावधानी से चेष्टा करनी चाहिए। प्रभुपाद ने कहा है इस मनुष्य जीवन में बहुत से अभाव हैं, बहुत से कष्ट हैं, उनको दूर करने के लिए दिन रात सोचेंगे यह जन्म बेकार जाएगा, इसलिए इनके लिए कुछ चिंता ना करके दिन रात भगवत भजन में लगे। यदि इन कथाओं में रुचि नहीं हुई तो वह समस्त जन्म ही विफल गया। भगवान अनंत देव की कथाओं में जिनको रस माने अनुराग हुआ है, वो बिना कथाएं सुने बहरा नहीं सकता, अपने से उन्नत वैष्णव के यहां सुनेगा या भागवत में देखेगा, टीकाओं को देखेगा या अनुशीलन करेगा, या जहां सुन सकता है वहां पर सुनेगा। इसलिए कहते हैं जैसे दीप लेकर के कोई चीज खोज रहा है और वस्तु को वो पा लिया तो फिर क्या करेगा, अब दीप की आवश्यकता नहीं है ना। और नदी उत्तीर्ण होने पर नौका की कोई जरूरत नहीं है, तो ये दीप और नौका क्या है, ज्ञान है, आत्मज्ञान तत्व इत्यादि, इसको गोपियां छोड़ चुकी हैं क्योंकि उनको प्रेम मिल गया है। इसलिए न्याय के अनुसार में जब साध्य फल उनको मिल गया गोपियों को या किसी को भी प्रेम, कृष्ण प्रेम, तभी सबकी जरूरत नहीं है। किंतु ऐसा मत सोचा जब भक्ति मिल गई तो साधन कभी हरिनाम कीर्तन करना और वैष्णव का आचार है ये सब छोड़ देने की जरूरत है, ऐसा मत सोचना, क्योंकि वो भक्ति ही है। इसलिए भक्ति भक्ति का साधन और भक्ति का साध्य दोनों ही भक्ति है, इसलिए किसी भी स्थिति में छोड़ी नहीं जा सकती। चलिए आगे चलें। फिर उद्धव जी और आगे कह रहे हैं, प्रेमा स्त्रियो बनचरी व्यभिचार दुष्टा कृष्णे च कैश परमात्म निरूढ़ भाव ननीश्वरोन भजतो अविदिशो पिशाच्यात् श्रेयस् तनोति अगदराजयोपयुक्तः। प्रेमा स्त्रियों वनचरी व्यभिचार दुष्टा। कहां ये व्यभिचारी स्त्रियां, वनचरी, वंची मैंने असदाचार से लिप्त, कहां ये? और कहां ये गोपियां? उद्धव जी कह रहे हैं जो लोग कृष्ण का भजन नहीं करते, जो स्त्रियां भजन नहीं करती और पतिव्रता धर्म इत्यादि पालन करती हैं, संसार के गृह कार्यों को सदा काम सदाचार के कामों में सब समय लिप्त रहती हैं, वो वनचरी हैं। और कैसी हैं? व्यभिचार दुष्ट है, कृष्ण को छोड़ करके दूसरे का भजन कर रही। कृष्ण चो कैश परमात्मा निरूढ़ भावा। और कहां गोपियां, इनका कृष्ण में कैसा, परमात्मा में रूढ़ भाव, फिर वही रूढ़ भाव, नन्वेषण भजतो। अरे गोपियों को बात छोड़ो, यदि कोई साधारण स्त्री भी कोई हो, व्यभिचारी हो, दुष्ट हो, असत कर्मों में लीन हो, तो भी यदि वो परब्रह्म जो कृष्ण है, नंदनंदन है, किसी प्रकार से उनमें कामना की भावना भी आकर के आए है और उनसे अपने चित्त को हार लगा दे, तो क्या होगा? कृष्ण तो स्वयं भगवान है, इसलिए उनका व्यभिचार भाव दूर हो जाएगा और परम सदाचारिणी बन जाएंगी और कृष्ण की ऐसी भक्ति हो जाएगी। यह कृष्ण भक्ति का ऐसा ही फल है, यह कृष्ण के का ऐसा ही भाव है। इसलिए बतलाया, कामना के द्वारा, क्रोध के द्वारा, भय के द्वारा, देश के द्वारा, भक्ति के द्वारा, संबंध के द्वारा, किसी प्रकार से चित्त कृष्ण में लगाओ, कैसे भी लगे, क्रोध से लग जाए कोई बात नहीं, काम से लग जाए, जो बुरा संसार में काम है ऐसे से लग जाए, द्वेष से लग जाए, किसी प्रकार से लगना चाहिए, किसी संबंध से लग गया उसका कल्याण ही कल्याण होगा। इसलिए कहते हैं कि अहो कृष्ण प्रिया, जो स्त्रियां ही ये कहां कहां ऐसी, और कृष्ण को छोड़ करके व्यभिचार दोस्त अनुसुईया जी को क्या कहा जाएगा? कैसे आ जाएगी? व्यभिचार दुष्ट है कि नहीं, शुद्ध नहीं, अपने पति के प्रति होते हुए उनका पति और वो दोनों कृष्ण भगवान राम की भक्त हैं, इसलिए बच गई। किंतु नल दमयंती इत्यादि का जो है, दमयंती इत्यादि कैसी है? व्यभिचार दुष्ट, सब 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 व्यभिचार दुष्ट। इसलिए व्यभिचार दुष्ट, आमादेर मत लोक सकले कुथा है, हमारे जैसा व्यभिचार दुष्ट ये व्यक्ति कहां, और कहां ये गोपियां? भक्ति राज्य की उत्तम सबसे अंतिम सीढ़ी रूढ़ भाव कृष्ण के प्रति, अथवा वनचरी, वनचरी मैंने हमारी क्रीड़ा भूमि जो वृंदावन है उसमें भ्रमण करने वाली यही वनचरी गोपियों का कृष्ण के विषय में रूढ़ भाव कैसा? साधारण रूप में वन का यह होता है दुर्गम स्थान, दुर्गम स्थान साधारण लोगों के लिए आएगा, दुर्गम स्थान भगवान को छोड़ करके संसार के इस रचे पचे इस जगत में अपने पति में रक्त रक्त और हाड़ और मांस में अनुराग है जिनका, यह वनचरी का लक्षण और व्यभिचार दोष। हम कृष्ण के हैं, कृष्ण ही हमारे हैं, कृष्ण के हम नित्य दास दासी हैं, इसको छोड़ करके संसार का पतिव्रत भाव और या दूसरे लोगों का, यह सब वनचरी और व्यभिचार दोष है। और हम लोगों के कृष्ण के विषय में कहां प्रीति? कौन कह रहा है? उद्धव जी कह रहे हैं, अपने को भी व्यभिचार दुष्ट बतला रहे हैं। तबे जीवन ना जानिया अमृत पान कर ले, जैसे कि बिना जाने सुने अमृत पान कर लिया तो मृत्यु को पार कर जाता है, उसके शरीर की पीड़ाएं दूर हो जाती हैं, वो निरोग हो जाता है व्यक्ति, ऊपर से उसका मंगल ही होता है। उसी प्रकार से अज्ञ व्यक्ति भी यदि नई ज्ञान सुन करके भी भगवान का भजन करता है, कृष्ण में किसी प्रकार से उसकी प्रीति हो जाती है, तो वो सब प्रकार से उत्तम और मंगलजनक बन जाता है। उदा जी कहने लगे, तुम मा स्त्रियो बनिचार व्यभिचार दुष्टा, ऐसी जो गोपियां हैं जिनको रूढ़ भाव है कृष्ण में, जिनके लिए कृष्ण सब समय चिंतन करते हैं, इन गोपियों का संग प्राप्ति हमारे लिए कोई भी योग्यता नहीं है, ऐसी योग्यता नहीं है जो इन गोपियों का संग पाए। इन गोपियों का महात्मा सुनना भी ये बड़े सौभाग्य की बात है, इनकी कोई भी लीला कथा भी सुनना बड़े सौभाग्य की बात है। जब प्रहलाद महाराज की कथाएं और भागवत की कथाएं सुनने में ये बड़े सौभाग्य की बात है, तो ये गोपियों की तो बात की कोई बात ही नहीं है। तो उद्धव जी कहते हैं कि हमारी ऐसी योग्यता नहीं जो गोपियों का संग प्राप्त कर सके। कब कह रहे हैं, कब की बात? जबकि दो तीन महीने रहे ना, गोपियों की महिमा समझा, उपलब्धि किया, जो गोपियों का यह भाव प्रेम भाव कितना रूढ़ है, तब कह रहे हैं। हाँ, जब जैसे कि वहां पर गए, गोवर्धन में गए, इधर उधर गए, उनकी इन सब चीजों की उपलब्धि की, उपलब्धि के बाद में कह रहे हैं हम इनका संग नहीं कर सकते। संग माने क्या? संग तो किया तो फिर क्यों कह रहे हैं जे संग? इनके शरीर का तो अनुगमन किया, जहां जहां वो गई गए, भावों का अनुगमन किया। गोपियों का कृष्ण के प्रति जैसा भाव है, जैसा विरह है, जैसा उनको मिलन में सुख है, उनके प्रति जैसे कांत की भावना है कृष्ण के प्रति, ऐसा उनका होगा, इसलिए संग नहीं हुआ। संग माने सम्यक रूप गमन, अच्छी तरह से उनके भावों का अनुगमन करना, ये संग है। साधुओं के संग में संग रहने से कुछ दिन विरक्ति हो जाती है और उनका संग छोड़कर के हम दूसरी जगह चले जाते हैं, ये संग नहीं है। संग माने क्या? उनके गुणों को देखना, भगवान के प्रति उनकी भजन के भाव को देखना, उनके अंतर्निहित भावों को देखना, ये ग्रहण करना, ये है संग। तो उद्धव जी कहते हैं हमें ये अधिकार नहीं है, हमारा इतना अधिकार नहीं है जो ग्रहण कर सकते हैं। गोपियों के दुख को देखा, इतनी दुखी, दिन रात दुखी, रो रही हैं, कलप रही हैं। यदि कृष्ण प्रेमी को इतना दुख है तो हम तो इतना नहीं सह सकेंगे, इसलिए जल्दी से चले गए। चले गए फिर कृष्ण को लेकर के या अकेले आए कि नहीं? अब फिर दूसरी बात, यदि उनको अच्छा ही लगता गोपियों का संग तो फिर थोड़ा सा दो दिन के लिए, पांच दिन के लिए आ जाते उद्धव जी, पांच दिन के, एक दिन के लिए भी, एक घंटे के लिए आए। उद्धव जी का आपको नहीं सुना जाता है जो गोपियों की शुद्ध बुधली की नहीं, इसलिए भाई साधुओं के संग में रहना बड़ा भारी कठिन है। बंशीदास बाबा जी के साथ में कोई रह सकता है या गौरकिशोर दास में? एक दिन में मारपीट करके दुरुस्त करके भगा देंगे, एक दिन में उनकी गाली हम लोग तो नहीं सह सकते, एक दिन भगा देंगे। प्रभुपाद को भगा दिया तो और दूसरों को बात क्या, ये समझो इतने योग्य व्यक्ति को भगा रहे हैं, वो तो बड़ी मुश्किल से भक्ति विनोद ठाकुर और ये सब, या उनका संबंध वैसा था, हम लोग एक दिन भी उनके यहां नहीं टिक सकते। किसी भी सच्चे संत के पास में रहना बड़ा भारी कठिन है। ये तो मध्यम अधिकारी है जो चार प्रकार के भावों को रखता है, कौन? प्रेम, मैत्री, कृपा, अपेक्षा, क्योंकि इनका वो अधिकार है। किंतु जहां इससे ऊपर गए उनका संग करना बड़ा भारी कठिन है, नारद जी के संग में कितने भक्त लोग जाते आते रहे हैं, जब नारद जी जब द्वारका जाते हैं कहीं जाते हैं उनके संग कितने लोग जाते हैं, आकाश से उतर रहे हैं। अब उनके साथ में आकाश में उनके साथ साथ में कौन विचरण करेगा, करेगा वो खाते नहीं, ये कहेंगे गुरु जी हमको आज रसगुल्ला चाहिए, तो नारद जी कहां से देंगे, चाहे तो दे देंगे रसगुल्ला बरसा देंगे, किंतु वो तो खाते ही पीते ही नहीं है, इसलिए उनके साथ में हम लोग नहीं रह सकते एक दिन भी, उनको मच्छर नहीं लगता, हम लोगों को भी मच्छर लगते हैं, हमको भूख लगती है, कष्ट है, शारीरिक ताप है, उनको है, उनके साथ में कैसे रह सकते। सनातन गोस्वामी के साथ में रहोगे कि नहीं, उनको होश नहीं है, वो तो हे राधे ब्रज देवी के ललिते कह करके लूट पोट रहे हैं, तुम मर रहा है खाया कि नहीं, मच्छर लग रहा है, वो पूछेंगे। यहाँ तो आप लोग कह सकते महाराज जी कभी हमको देखते नहीं है, सारी व्यवस्थाएं हैं, किंतु महाराज जी ने देखो हमको आज बुखार हुआ, इन्होंने पांच दिन तक तो पड़ा रहा कि इन्होंने कुछ कहा ही नहीं, पूछा ही नहीं, बस चले जाएंगे, कहे उनका स्नेह नहीं है। किंतु ऐसे ही समझो जब हमारे साथ में नहीं रह सकते, जो सब प्रकार की सुविधाएं हैं, तो उन लोगों के पास रहना है, उद्धव जी का गोपियों के पास में कैसे रहेंगे। इसलिए वो कह रहे हैं, सचमुच में कह रहे हैं, ये हमारी योग्यता नहीं रहे, एक दिन भी गोपियों के पास में नहीं रहे। कृष्ण के कहने से गए, अपने भावों को छोड़ाए, उनका कृष्ण के प्रति जो भाव था ऐश्वर्य भाव, ये छूटा, गोपियां धो सकी, बस उसी को लिए हुए गए, गई गए और फिर वहीं से लौट करके चले आए, उनके संग में नहीं रहे। कहेंगे जैसे ये बेकार काम के साथ में रहना। इसलिए जो सच्चे संत होंगे, जो ऊपर उठ करके प्रेम का थोड़ा थोड़ा सा जिनमें भाव है, उनका संग करना वही कर सकते हैं जिनकी खूब सुकृति होगी, वही साधारण लोग नहीं कर सकते, केवल महाप्रभु। श्री कृष्ण ने परम करुणा बले ये कृष्ण की कृपा है कि मैं इनके निकट करें, ये कृष्ण की कृपा है कि मैं इनके निकट तक आने का सौभाग्य लाभ किया और इनके भावों को कुछ कुछ हृदयंगम कर सका। किंतु हृदयंगम करना एक बात, ग्रहण करना एक बात, ग्रहण किया बस महिमा देखा, हिमालय पहाड़ 29,135 फुट ऊंचा है और उस पर बर्फ जमे हुए हैं, उस पर दुर्लंघ है, ये तो देखा, किंतु उसकी कोई भी लता गुल्म घास या रेती बन गए हम। ऐसे ही उद्धव जी गोपियों के पास में गए, देखा, उनके भाव का तनिक भी कुछ ग्रहण नहीं कर सके, बस प्रार्थना कर दिए, बस ये ऐसा ही हमारा किसी दिन हो। इसी को अब गोपियों की महिमा कैसी है, इसको ये उद्धव जी बतला रहे हैं। कितना बज गया, 7। क्वे मा स्त्रियो वनचरी व्यभिचारो दुष्ट। ये विष्णु का वन किसका वन है, ये वृंदावन, वृंदावन गोपाल वनम बना पाया, विष्णु का भी कह दो, इदं च विष्णु, विष्णु माने व्याप्नोति, कृष्ण के लिए समझो, इस वन में तत् क्रीड़ामय वृंदावन में, यहाँ पर चारों तरफ बिंदे जी के पौधे हैं, बिंदा जी का ये तुलसी जो हैं, उस बिंदा जी वृंदावन की जो अधीश्वरी हैं, उनके ये प्रकाश हैं, जैसे राधा जी के प्रकाश वैकुंठ में लक्ष्मी जी हैं, वैसे वृंदावन की जो वृंदा देवी हैं, उनके ये प्रकाश स्वरूप हैं, कौन, शालग्राम की पटरानी या नारायण की पटरानी तुलसी देवी। वृंदा जी का गोपों के साथ में शादी है, वृंदावन के गोप के साथ में वृंदा जी की शादी, और उनकी शादी किसके साथ में है, शालग्राम और उसके पहले कौन था ना, जलंधर इत्यादि, किंतु यदि हुआ भी कृष्ण ने भी उसको नारायण ने भी ग्रहण किया शालग्राम रूप में, उनकी शादी शालग्राम से होगी। और यदि कोई बृंदा जी की शादी शालग्राम से करता है तो वो क्या है, अपराधमय कृत्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि शालग्राम कृष्ण को समझो जे कृष्ण ही, तब तो हो जाएगा। अने तो उस नारायण भावना से बृंदा जी की शादी मत कराना, तुलसी जी की शादी नारायण से कराना, ये हो सकता है। तो जो कृष्ण भक्त होंगे, गोपियों के भक्त होंगे, वो शालग्राम के साथ में तुलसी जी की शादी कराएंगे कि नहीं, उनको क्या जरूरत है, उनको ये सब की जरूरत नहीं। विष्णु के वन में, कृष्णा के जो लीला के स्थल हैं, वृंदावन में प्रेम पूर्वक एक वन से दूसरे वन में, कहां, कभी भंडीर वन में, कभी वृंदावन में बंशी तट के निकट, कहीं टेर कदंब में, कभी कौन जावट से जाने में, कोकिला बन नहीं वो संकेत इत्यादि जाने में, ऐसे जगह में जो विचरण करती हैं गोपियां, इस तले बहुवचन के द्वारा वनचर्या होना चाहिए था, किंतु न करके वनचरी एक वचन का है। ये क्या है, छंदस पाठ बतला रहे, इसमें भूल त्रुटि मत देखना। कहां ऐसी जो गोप ये गोपियां हैं, ये कहां गोपी स्त्रियां, और कृष्ण भक्ति के विषय में व्यभिचार दुष्ट, कृष्ण के प्रति भक्ति नहीं है। यहां व्यभिचार करने से सत्कर्मणी अन्यथत्वम, सत्कर्म क्या है, कृष्ण के हम दास दासी हैं, और दूसरे सत्कर्म में तो खूब हैं, किंतु कृष्ण भक्ति में कृष्ण के प्रति उनकी रुचि नहीं है, उनके प्रति पारांग मुख है। सत्कर्म के अन्यथा चरण वास, सत्कर्म में पराम उल्टा होना, विशेष रूप से भगवान का आदेश लंघन करना, आदेश माने क्या, जितनी जीव हैं सभी कृष्ण दास दासी हैं, इसको छोड़ करके जो संसार में व्यक्ति हैं इधर उधर, ये हमारे पति हैं पुत्र हैं इत्यादि, वो सभी व्यभिचार दुष्ट है, अथवा निशेष रूप से अब प्रतिपालन जनित अपराध, ये क्या है, तद्भक्ति निष्ठा राहित्य, कृष्ण के भक्ति नहीं है, इसलिए ये लोग व्यभिचार दुष्ट हैं। संसार में सभी लोग केवल कृष्ण के भक्ति से युक्त लोग ही सदाचार विशिष्ट है, उसमें गोपियां सबसे सदाचारी है। आज यहीं तक रहे, नहीं तो बहुत रात हो जाएगी। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां। कल 4 बजे हम लोग यहाँ पर आरंभ करेंगे, 5 बजे 5:30 बजे निकलेंगे, इसलिए कल आप लोग सभी लोग 4 बजे 4:15 बजे तक जरूर आ जाएं। कुछ बाहर के लोग भी आ सकते हैं, आप लोग कुछ हरि कथा कहेंगे, हम भी कुछ हरि कथा कहेंगे, सुनेंगे। बाहर के लोगों की उतनी आवश्यकता भी नहीं है, किंतु आप लोग सभी लोग आएंगे, और भी जो आना चाहेंगे, थोड़ी सी प्रसाद इत्यादि की भी व्यवस्था रहेगी। आप में जो अच्छे अच्छे वक्ता लोग हैं कुछ बोलेंगे, जो विदेशों में कैसा रहना चाहिए, और भगवान से हमारे लिए प्रार्थना करेंगे जो वहां पर शीघ्र ही कुछ भक्ति का शुद्ध रूप में प्रचार करके निर्विघ्न से हम मथुरा में लौट आए जल्दी से वृंदावन। गौर प्रमाण लो, कोई है कीर्तन करने वाले, एंड एनीवन ऑफ यू, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश टू प्रे कृष्णा, वी विल प्रे कृष्णा दैट ही शुड बी मर्सीफुल टू मी एंड माई पार्टी, दैट आई कैन गो टू वेस्टर्न कंट्रीज प्रीच हरि भक्ति एंड रिटर्न वेरी सून फेसिंग नो डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स। ठीक, बहुत बहुत अच्छा।